22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। ये समय सामान्य समय नहीं है, ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा।
नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जनवरी को एक और तारीख मिल गई है, 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। पहले 26 जनवरी से 30 जनवरी की गिनती शुरू हो जाती थी, अब 22 से हुआ करेगी। 22 की जनवरी जय श्री राम कहेगी, 30 की जनवरी हे राम को याद करेगी। यह संयोग भी जनवरी को मिला। आप चाहें तो इन दोनों जनवरी के बीच 26 जनवरी का अकेलापन महसूस कर सकते हैं। हमने भी सोचा कि उस नए भारत का नजदीक से दर्शन किया जाए, जिसके दूरदर्शन पर एक आवाज आती है कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर भव्य बनाएंगे। यह कमेंट्री मंदिर की तरफ से की जा रही थी या दूरदर्शन की तरफ से, इसकी जानकारी मुझे नहीं, मगर हमने सुनी तो दूरदर्शन पर ही। और यह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की आधिकारिक पंक्तियों में से एक थी। अब आपको इस नारे के लिए भाजपा मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं, दूरदर्शन या कोई भी गोदी चैनल खोल लीजिए, पूरी भाजपा, पूरा आरएसएस सब आपके घर आ जाएंगे, बल्कि आपके दरवाजे तक भी आ गए हैं। सोसाइटी के गेट पर उनके तंत्र की मौजूदगी में राम कितने हैं, बीजेपी कितनी है, यह छांटने का काम आप भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। तो हम अपनी पुरानी कार में बैठ उसके चक्र के सहारे उस भारत को देखने निकल गए जहां एक नए काल चक्र का उद्गम हुआ है। दिल्ली के एक मोहल्ले में जाकर देखने का इरादा किया कि आखिर उस भारत में ऐसा क्या नया हो गया है। एक रंग के पताकों और ध्वज को देखते हुए ट्विटर और फेसबुक पर पसरी तमाम आशंकाओं सवालों को याद करने लगा। हताशा में डूब चुके उन लोगों की थरथराती आवाज को महसूस करने निकल गया जो आज के भारत को लेकर चिंतित हो गए हैं, जिन्होंने 22 जनवरी को हमेशा के लिए अपनी उम्मीदें खो दी हैं। मैं उन लोगों के साहस को भी महसूस करने निकल गया जो आज के भारत में एक मत जनमत के विस्तार के बीच बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को अपराध के रूप में याद करते रहे, जिसे कोर्ट ने भी अपराध कहा है। उन लोगों की जिद को भी महसूस करने निकला जो याद दिला रहे थे कि फैसले में कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। ट्विटर पर अयोध्या में एक दुकानदार और मुसलमान बूढ़ा एक पत्रकार से यही बातें दोहरा रहा था, कह रहा था कि फैसला पढ़िए, कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो अपने उदासी गर्व के साथ बता रहा था। अकेले की वो आवाज भीड़ की आवाज से ज्यादा खनक रही थी। इसके बाद भी 22 जनवरी को कई जगहों पर लोग दोहराते हुए सुने गए कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई। राम अगर सत्य का नाम है तो इस सत्य को जनता तक पहुंचने में अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सत्य अदालतों के फैसलों के बाद भी आता है, वो जाता कहीं नहीं, यहीं कहीं रह जाता है, इन्हीं सड़कों पर जिन पर हमारी कार चल रही है। घंटे भर के हमारे सफर में 22 जनवरी के भारत की आशंकाएं 22 जनवरी के भारत की संभावनाओं से टकरा रही थी, दब भी गई थी मगर बोल रही थी। इसी बीच मुझे 22 जनवरी के दिन 6 दिसंबर 1992 की याद दिलाने वाले भी मिले, बस उनकी जगह अब नई उम्र के लड़कों ने बाइक संभाल ली है उन्हीं नारों को दोहराने के लिए। मुंबई के मीरा रोड पर उत्पात मचाने के वीडियो को देखकर लगा इनका ही आना हुआ है, राम नहीं यही लोग आए हैं। कुछ जगहों से ऐसे भी वीडियो आए जिसमें भगवा झंडा लेकर लड़के चर्च पर चढ़ रहे हैं। एक वीडियो में गालियां दी जा रही हैं, मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसे मामलों को लेकर FIR हुई है। हजारों साल बाद याद किए जाने वाले इस उत्सव से आखिर ये लोग कैसे बाहर रह सकते थे। इसके बाद भी 22 जनवरी का भारत एक तरफा नहीं हो सका। किसी का दबदबा होना और भारत का एक तरफा हो जाना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। मैंने उसी 22 जनवरी के भारत में कई सारे भारत देखे हैं। JNU में कुछ ही तो थे मगर संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर रहे थे। मलयालम फिल्म जगत के कुछ निर्देशकों और कलाकारों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया और साझा किया। ठीक उद्घाटन से कुछ देर पहले उनके पोस्ट आने शुरू हो गए। वे इस घटना के राजनीतिकरण का विरोध कर रहे थे। अभिनेता पार्वती थिरुवेतु, रीमा कलिंगल, दिव्या प्रभा, कणी कुसुरति, निर्देशक जियो बेबी, आशिक अबू, कमल KM, गायक सूरज संतोष ने प्रस्तावना को ट्विटर पर साझा किया। आखिर ये कलाकार भी तो उसी देश में रहते हैं जहां ED के कारण लोग कांपने लग जाते हैं। सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम पर संविधान की प्रस्तावना शेयर की है। सुष्मिता के घर ED पहुंचेगी या पहले CBI, यह तो राम ही बता सकते हैं। मगर राम का नाम लेकर यह जरूर सोचता रहा कि फिल्म कलाकारों को क्यों VIP की तरफ बुलाया गया। क्या बुलाने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे इतने बड़े अखंड और प्रचंड भारत में कि विकी कौशल, रणदीप हुड्डा, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, विवेक ओबराय को बुलाया गया। इनके बीच क्या वाकई लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अमित शाह, मुरली मनोहर जोशी, राम भक्त नजर नहीं आते, जो वहां नजर ही नहीं आए। BJP के ही कितने केंद्रीय मंत्री और UP सरकार के कितने मंत्री वहां नजर नहीं आए। वैसे फिल्म स्टार भी कुछ कम राष्ट्र सेवा नहीं करते हैं। जब भी सरकार को जरूरत पड़ती है एक ही टेक्स्ट ट्वीट कर देते हैं। मालदीव के खिलाफ लोहा लेने में इनका योगदान अतुलनीय है। अगर ऐसे राष्ट्रकर्मी नहीं बुलाए जाएंगे तो उस कालचक्र का अपमान होगा जिसका उद्गम 22 जनवरी को हुआ है। इस कालचक्र के उद्गम के पहले ऐसे बड़े आयोजनों में सुपरस्टार ही बुलाए जाते थे। फ्लॉप फिल्मों के स्टार को इतना सम्मान इसी भारत में मिला है जिसमें 22 जनवरी को एक नए कालचक्र का उद्गम हुआ है। कैलाश खेर, अनुराधा पौडवाल, तो उनसे कोई शिकायत नहीं। इन दोनों ने कई सारे कर्णप्रिय भजन पहले भी गाए हैं। इन्हें देखकर मन में कोई क्वेश्चन उत्पन्न नहीं हुआ, पर फिल्म स्टारों को बुलाने के पीछे कुछ तो मकसद रहा होगा। इस पर लोगों ने सवाल क्यों नहीं किया, उनसे किस प्रकार की मान्यता चाहिए थी, किसे चाहिए थी, क्या उनके जीवन में इतनी भक्ति है कि बुलाए गए। मैंने भी बहुत ज्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाया क्योंकि जो भी राम का नाम लेकर आए अपना ही है। मैं भी राम का हूं और वो भी राम के ही हैं। लेकिन यही बात मैं इस व्यक्ति के बारे में नहीं कह सकता। ये राम का नाम लेकर कहीं भी आएगा, मुझे भी राम का नाम लेकर कुछ बातें तो बतानी ही पड़ेंगी। इसका नाम अनिल अंबानी है। मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था, बैंकों के हजारों करोड़ का लोन नहीं चुका सका है। अंग्रेजी में इसे डिफॉल्टर कहते हैं। एक आम किसान 1-2 लाख का लोन नहीं चुका पाने पर अपनी जिंदगी से निराश हो जाता है, खत्म कर लेता है। मगर यहां अनिल अंबानी को अमिताभ बच्चन के साथ देखा तो मेरा मन भी राममय हो चला। राम की कृपा से हजारों करोड़ का कर्जा नहीं चुकाने वाला भी प्राइवेट जेट से आया होगा। जिस भारत में काल चक्र घूमा है उस भारत में हजारों करोड़ का कर्जदार भी घूम रहा है बेफिक्री के साथ। यह सभी आम गरीब लोगों के लिए आनंद का विषय होना चाहिए। कोई तो है जो इतने हजार करोड़ का लोन लेकर इस तरह VIP बना हुआ है। फ्रांस से लड़ाकू विमान रफाल की खरीद को लेकर अभी तक वहां जांच हो रही है फ्रांस में। भारत में जांच पूरी हो गई, सुप्रीम कोर्ट की मुहर भी लग गई। रफाल सौदे के समय अनिल अंबानी का नाम खूब उछला। अमिताभ बच्चन के साथ अनिल अंबानी को देखकर कई सारे खबरें घूम गईं। बल्कि यही राम की लीला है, उन्होंने अपनी रामलीला में सबको बुला लिया ताकि जो नहीं दिख रहे थे बहुत दिनों से वे भी दिख जाएं। इस रामलीला में अनिल अंबानी ही नहीं, भारत के जंगलों के उद्धार के लिए मशहूर अनिल अग्रवाल भी नजर आए, जिनकी वेदांता पर अरबों का कर्ज है, जिस पर हाल ही में पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे, कई खबरें आई। आज की पीढ़ी का नाचना जब खत्म हो जाएगा तब उसे समझ में आएगा कि राम का नाम लेकर एक पत्रकार अकेला खड़ा क्या कह रहा था, राम से भी और अपने समय से भी। इसलिए 22 जनवरी के भारत को आपको धीरज के साथ देखना होगा। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य का जिक्र किया है। अगर आप जवाब चाहते हैं तो यहां से आपको भी अपने सवालों के जवाब के लिए सदियों का धीरज रखना होगा। ऐसा नहीं था कि 22 जनवरी को लोगों के बीच राम मंदिर को लेकर स्वाभाविक उत्साह नहीं था, बिल्कुल था, बल्कि कई जगहों पर फर्क करना मुश्किल रहा कि कौन सा आयोजन लोग अपनी खुशी से अपनी तरफ से कर रहे हैं और कौन सा आरएसएस सरकार और बीजेपी के आदेश और निर्देश से किया जा रहा है। अगर आदेश और निर्देश नहीं होते तब जाकर पता चलता असली उत्साह कैसा था। इन्हीं सवालों के प्रति अपने भीतर सदियों का धीरज पैदा करने के लिए दिल्ली के पटपड़गंज में अपनी कार से घूमने लगा। हाउसिंग सोसाइटी के गेट सजे हुए नजर आए। कुछ सोसाइटी को पूरा सजाया गया था मगर बहुत सारी सोसाइटियों की बालकनी में अंधेरा नजर आया। आमतौर पर सोसाइटी के गेट पर ही सजावट नजर आई, वो भी संक्षिप्त, दिवाली जैसी विस्तृत नहीं। फ्लैट की बालकनी में अंधेरा नजर आया। अकेले खड़े मकानों की छत पर भगवा ध्वज लहरा रहा था, मगर ऐसा भी नहीं था कि सभी मकानों की छत पर लोगों ने भगवा ध्वज लगाए थे। कुछ बाजारों में धार्मिक पताका की भरमार नजर आई तो कुछ मार्केट में भगवा ध्वज इक्का दुक्का ही नजर आया। जितना बीजेपी और संघ के संगठन का विस्तार है उसका कुछ तो असर दिखना ही था, मगर वैसा भी नहीं दिखा कि इनके संगठन तंत्र ने पूरे भारत को एक छत के नीचे ला दिया है। इन सब को देखते हुए क्या आज के भारत को वैसा ही मान लिया जाए जैसा प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं, मनवाना चाहते हैं? यह तो स्वीकार करना ही होगा कि बीजेपी और संघ के संगठन की ताकत हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर पहुंच गई है। कई जगहों पर भंडारे का आयोजन हुआ मगर उस तरह से नहीं जैसे नवरात्रि के समय दिल्ली भंडारे से भर जाया करती है। क्या उन लोगों ने वाकई 22 जनवरी के दिन उस भारत को खो दिया जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे थे? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा। संस्थानों को गवा देने से देश गायब नहीं हो जाता, देश वहीं रहता है, बस बोलने वाले गायब कर दिए जाते हैं। मगर चुप रहने वालों को अच्छी तरह पता होता है कि वे क्यों चुप हैं। मुझे नहीं लगा कि प्रधानमंत्री जिस कालचक्र के उद्गम की बात कर रहे थे वह उद्गम हो चुका है या कुछ अलग कोई परिघटना हुई है। बेशक 24 के चुनाव में उनकी जीत हो सकती है, उसके कारण दूसरे होंगे। मैं भगवा झंडों को देखता हुआ लौट आया जिसे अब कई मौकों पर देखने की आदत पड़ चुकी है। 15 अगस्त के दिन भी यह झंडा खूब बिकता है। ऑटो टैक्सी पर एक तरफ तिरंगा और एक तरफ भगवा झंडा लगाया जाता है। मुझे पता है कि मोदी समर्थकों की संख्या काफी बड़ी है, उनकी ताकत भी बड़ी है। तब भी दिल्ली की सड़क पर चलते हुए दिखा कि सारा भारत अभी एक तरफा भारत नहीं हुआ है। एक दो कारें दिख जाती थी जिन पर भगवा झंडा लहरा रहा था। मैं यह भी जानता हूं कि मेरी कार के आगे से गुजर रही इन सभी कारों में नरेंद्र मोदी को वोट देने वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी उस तरह से जाहिर नहीं की जिस तरह से जाहिर करने की अपील नरेंद्र मोदी ने की थी। वे अभी तक अपनी महंगी कार के आगे भगवा झंडा लगाकर चलाने का गर्व हासिल नहीं कर पाए हैं। हमने जो देखा, दिल्ली का एक हिस्सा देखा, पूरी दिल्ली नहीं देखी, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों से जो वीडियो आ रहे थे उससे लग रहा था कि हर जगह दिवाली जैसी दिवाली मनाई भी गई है और लोगों ने काफी बड़े आयोजन किए हैं। यह वीडियो दिल्ली से सटे एक्सप्रेसवे पर बने एक अपार्टमेंट का है। आप देख सकते हैं कि कितने फ्लैट को सजाया गया है और किस तरह से लोगों ने जमीन पर उतरकर भव्य दिवाली मनाई है, पटाखे छोड़े हैं। यह सारे वीडियो अब मेरठ के हैं। संघ और बीजेपी की इतनी शक्ति तो है ही कि सड़कों को पटाखों से पाट दे और जगह जगह भंडारे का आयोजन कर दे। यहाँ पर काफी प्रभाव देखने को मिला। कई मोहल्लों में लोगों ने अपने घरों को भी लड़ियों से सजाया था। पटना में बहुत लंबे रास्ते पर भगवा ध्वज लगा दिया गया था। यह पटना का मुख्य मार्ग है। पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर लगे बोर्ड से पहचानना मुश्किल हो रहा था कि यह राजनीतिक दल का दफ्तर है या धार्मिक दल का। राम मंदिर का उद्घाटन राजनीतिक है या धार्मिक है? जब न्याय व्यवस्था आपको निराश करने लगे और उससे भरोसा उठने लगे तब आपको किसी भी प्रकार के नए या पुराने भारत से दहशत हो सकती है। वह भारत अनजाना सा लगने लग सकता है। आपको पता है कि वहां से कुछ नहीं होगा या जो भी हुआ है वहीं से हुआ है, तब आप भीतर भीतर कांपने लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए सोका ने 17 जनवरी को कहा कि यह मेरा निजी विचार है कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ उस समय जो हमारा भरोसा था वह कई कारणों से कमजोर हो गया है। मुख्य कारण यह है कि हम लोगों को सस्ता न्याय नहीं दे सके हैं। अब बताइए 17 जनवरी का भारत 22 जनवरी को पूरी तरह बदल गया। जस्टिस ओका ने कई कारणों में से एक कारण को मुख्य बताया, लेकिन इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं यह सोचना आपका काम है। अयोध्या में कई रिटायर्ड जस्टिस मौजूद थे, कई सारे पूर्व चीफ जस्टिस भी गए, सबके नाम नहीं पढ़ रहा, इनके नाम वैसे भी 1000 साल बाद तक पढ़े जाएंगे। बार एंड बेंच के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 13 पूर्व जज वहां मौजूद थे। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि राम में इनका भरोसा बता रहा है कि न्याय में भी इनका भरोसा रहा ही होगा। इन जजों की मौजूदगी से वैसी ही खुशी हुई जैसी खुशी मुझे अनिल अंबानी को देखकर हुई। राम ने सबको अपनी रामलीला में बुला लिया, यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका का आभार जताकर बहुत अच्छा काम किया। राम मंदिर के निर्माण के लिए फैसला देने वाले 5 जजों में से एक जस्टिस अशोक भूषण भी वहां मौजूद थे, जो इस समय रिटायर हैं। तो न्यायबद्ध तरीके से बना है। प्रधानमंत्री ने इसे याद कर एक जरूरी काम किया, मगर यह भी कह दिया कि न्याय की लाज रख ली। अगर आप इन दो अलग अलग पंक्तियों का एक ही मतलब समझते हैं तो आप वाकई न्याय को देखकर लजा जाने वाले व्यक्ति हैं। अगर यह फैसला कुछ और होता तब क्या प्रधानमंत्री कहते कि न्याय की लाज रख ली गई? न्यायपालिका की तारीफ भी शर्तों के साथ की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज आत्मा प्रफुल्लित है कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा हमारे राम आए हैं। उन्होंने सबके बलिदान को याद किया, उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और अनगिनत संत महात्माओं के ऋणी बताते हुए उन्हें याद किया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तोड़ने की घटना को कानून का उल्लंघन माना है, क्या इस काम को भी बलिदान, तप और तपस्या में गिन लिया गया? यह जवाब कौन देगा? भारत को संविधान की खींची हुई सीमा रेखाओं से याद किया जाता है, पहचाना जाता है, मगर प्रधानमंत्री इस भारत के भीतर मंदिरों के जरिए उसके भूगोल को याद करते हैं। विराम के जरिए भारत की रेखा खींचते हैं जो संघ की धारा में लंबे समय से खींची जाती रही है। प्रधानमंत्री की पंक्ति भले अलग हो, नए मुख से कही जा रही हो, मगर उसके भाव वही थे जो उनसे पहले इस मुद्दे को लेकर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और संघ के कई सरसंघचालक बोला करते थे। वे गैर हाजिर थे मगर उनकी राजनीति के शब्दों की हाजिरी हर तरफ सुनाई दे रही थी, प्रधानमंत्री के शब्दों से भी टपक रही थी। मगर उसी भारत में कितना कुछ अलग था। राममय था मगर वैसा राममय नहीं जिस पर केवल संघ का एकाधिकार बताया जाता रहा। वह भारत 22 जनवरी को बोल रहा था, भले ही उसकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच रही थी क्योंकि मीडिया राममय हो गया था। राम का नाम लेकर भारत का मीडिया सत्य का साथ देने लगे तो वाकई मान लेता हूं कालचक्र का उद्गम हुआ है, कोई कालचक्र घूम गया है। एक नए कालचक्र में इस गोदी मीडिया पर एक महिला एंकर जय श्री राम के नारे लगवा रही थी। इस नारे को उसी मीडिया में जो वैधानिकता और मान्यता मिली है भारत के इतिहास में किसी भी नारे को नहीं मिली है। भारत के गोदी मीडिया को इस नारे का कब से इंतजार था? आप ही बताइए, क्या राममय राममय का नारा लगाने वाले आज के मीडिया के किसी भी काम को आप राम की मर्यादा के अनुकूल पाते हैं? सच कहिएगा, जिस मीडिया ने सच का साथ नहीं दिया क्या वो अयोध्या पहुंचकर इसलिए पवित्र हो जाएगा क्योंकि वह राम का नाम जप रहा था और जय श्री राम के नारे लगवा रहा था? क्या आप इस सवाल का सामना कर पाएंगे या नजर नीची कर जाएंगे? मीडिया की भक्ति में राम के नाम पर मोदी की भक्ति साफ साफ नजर आ रही थी। इसलिए 22 जनवरी का दिन याद दिलाता रहेगा कि आजाद भारत के मीडिया ने राम के नाम पर पूरे महीने क्या किया। आप मीडिया की रिपोर्टिंग पढ़िए, अब लौट कर फिर से तो देखिए। राम मंदिर के साथ साथ 2024 में मोदी की जीत मिलाकर परोसा जा रहा था। हर दूसरी पंक्ति में 2024 की जीत को शामिल किया जा रहा था। वह साफ करता चला गया कि यह जो भी हो रहा है 2024 के लिए हो रहा है। चैनलों के एंकर और प्रधानमंत्री के भाषण के वाक्यों में और भावों में कोई दूरी नहीं थी। दोनों की भाषा और भाव सोच का संगम हो गया था। 22 और 23 जनवरी के अखबारों के पहले पन्ने को पलटिए ही नहीं, बल्कि याद रखिए, इन अखबारों और चैनलों के पीछे समझौतों और हिंसा की इतनी कहानियां हैं जो किसी भी राम कथा में फिट नहीं हो सकती, बल्कि राम की ऊर्जा, राम के प्रवाह, राम के प्रभाव के नाम पर आप कभी भी इस मीडिया के काम को पवित्र नहीं कह सकते, आज भी नहीं और 1000 साल के बाद भी नहीं। इनके मालिकों और एंकरों को वहां बुलाया गया इसलिए ये किसी आधुनिक राम कथा में आदरणीय स्थान पा जाएंगे, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। एक न्यूज चैनल का एंकर कह रहा था, 22 जनवरी का दिन आध्यात्मिक स्वाधीनता का दिन है। जो खुद सत्ता के आगे गुलामी की भाषा बोलता हो वो आध्यात्मिक स्वाधीनता का नाम लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा था। क्या आपको लगता है कि इस मीडिया के पास किसी भी प्रकार की स्वाधीनता बची रह गई है? यही फर्क आया है। 1947 के पहले का भारत कहता था, गुलामी से मुक्ति चाहिए, आजादी चाहिए। 2023 के भारत का मीडिया है तो आजाद भारत का मीडिया ही, मगर वो अपनी गुलामी को आध्यात्मिक स्वाधीनता का नाम दे रहा है। गुलामी और आजादी की समझ कितनी धुंधली हो गई। गोदी मीडिया के एक एंकर ने ट्वीट किया कि आज के दिन भगवान राम से एक सवाल करना हो तो वह सवाल क्या होगा। उसके इस साहस को देखकर मेरा कमजोर मन थरथराने लगा, एक सवाल की जगह कई सवाल पूछने लगा। भगवान राम से मेरा सवाल है कि 10 साल हो गए, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? भगवान राम से मेरा सवाल है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करने वाले पत्रकार भी बुलाए जाएंगे? क्या हसदेव के जंगलों की कटाई पर मीडिया चुप्पी तोड़ेगा? भगवान राम से मेरा सवाल है, अदाणी पर लगे आरोपों पर मीडिया क्यों चुप रहता है? भगवान राम से मेरा सवाल है कि मणिपुर को लेकर मीडिया कब प्रधानमंत्री से पूछेगा? भगवान राम से मेरा सवाल है कि आज के भारत का मीडिया गुलाम क्यों है? आज के भारत का मीडिया सच क्यों नहीं बोलता? आज के मीडिया में करुणा क्यों नहीं है? नफरत क्यों है? राम का नाम लेने वाला मीडिया अपना काम क्यों नहीं करता है? भगवान राम से मेरे कई सारे सवाल हैं। इनमें से एक भी सवाल वह एंकर नहीं दोहरा सकता जो पूछ रहा था, राम से पूछना हो तो क्या पूछेंगे। वह एंकर भगवान राम से पूछ सकता है कुछ भी, मगर प्रधानमंत्री से नहीं पूछ सकता, नौकरी चली जाएगी। अब कोई एंकर ऐसा ट्वीट नहीं करता कि प्रधानमंत्री से पूछना है, आप कौन सा सवाल पूछना चाहेंगे? उसे राम से एक सवाल करना याद रहा, प्रधानमंत्री से एक सवाल करना 10 साल में भी याद नहीं आया। वह यह काम नहीं कर सकता इसलिए राम का नाम लिए जा रहा था। वह राम का नाम भक्ति या आस्था के लिए नहीं बल्कि अपने अपराधों पर पर्दा डालने के लिए ले रहा था। हमें मालूम है कि विशाल गोदी मीडिया के तंत्र के सामने हमारे इस वीडियो की पहुंच बेहद सीमित है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में गिलहरी और जटायु की याद दिलाई, आहा, जटायु को पता था, जैसा कि उन्होंने बताया, वो रावण की सेना को हरा नहीं सकते थे मगर रास्ते भर अपना बलिदान देते रहे, उसे रोकते रहे। इसलिए हम गिलहरी हैं और जटायु हैं, हम जैसे चंद पत्रकार। हमारे होने की प्रासंगिकता हमारी शक्ति और प्रभाव में बिल्कुल नहीं है, हमारी भूमिका में है। हमारी भूमिका बहुत छोटी है गिलहरी की तरह। हम संख्या में बहुत कम हैं, लेकिन हम गिलहरियों का काम है कि हम राम का नाम लेकर नाच रहे इस गोदी मीडिया के सारे पापों को जनता के बीच लाते रहें, उसे दर्ज करते रहें। भगवान राम से तो बहुत सारे सवाल हैं, मगर उनकी भक्ति के नाम पर एक ऐसी अदालत खड़ी कर दी गई है, एक ऐसी पुलिस खड़ी कर दी गई है, एक ऐसी निर्वाचन व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, एक ऐसा मीडिया खड़ा कर दिया गया है जो सत्य बोलने वालों की कमर तोड़ देता है, सत्य पर पर्दा डाल देता है, झूठे मुकदमों में सालों तक जेल में डाल दिया जाता है। 22 जनवरी के दिन की चुप्पी सहमति की चुप्पी नहीं होती। अगर ये हाल ना होता, क्या यह सब 22 जनवरी के बाद बदल जाएगा? अच्छा है बदल जाए तो। राम के नाम पर जनता के बीच बनी सेना को भरोसा हो गया है कि अब दुनिया का कोई भी प्रतापी सत्य उनके अहंकार से लोहा नहीं ले सकता। यह उसी शक्ति का अहंकार है कि राम का नाम लेकर एक थर्ड क्लास मीडिया आध्यात्मिक स्वाधीनता की बात कर रहा है और इसका विरोध करने का साहस समाज के हर वर्ग ने इसके चक्कर में खो दिया है। आप राम पर हमेशा गर्व करेंगे, मगर इस मीडिया पर, राम का नाम लेकर भी गर्व नहीं कर पाएंगे। कहां तो उसे राम के सामने खड़े होकर डरना चाहिए था, अपने पापों को याद करना चाहिए था, मगर सत्ता का सहचर बनकर वह ललकार रहा है। यह भी प्रभु की ही रामलीला है, देखते चलिए, उन्होंने ये रामलीला सजाई है। मीडिया की कमेंट्री में संविधान की आत्मा विस्थापित हो रही थी। एक न्यूज चैनल का एंकर किसी धार्मिक नेता से सवाल करता है, आप मोदी की तपस्या पर क्या कहेंगे? धार्मिक नेता कहते हैं, विधान और संविधान में अंतर है, विधान कभी बदलता नहीं, संविधान सैकड़ों बार बदलता है, कल विधान स्थापित होगा, आज संविधान ने विधान देखा है। इन बातों के अर्थ बहुत गहरे हैं, एक की विदाई है, एक का स्वागत है, विधान भी तो बदला है, जिसे लेकर शंकराचार्यों ने सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि राम भारत का विधान है, एंकर, धार्मिक संत, प्रधानमंत्री सब एक तरह से बोल रहे थे। मुझे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के सदस्य और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का वह कथन याद आ गया, उन्होंने अपने लेख में लिखा था, भारत का संविधान गुलामी का प्रतीक है, इसे बदलने की जरूरत है। बाद में समिति ने इस बात से किनारा किया। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि 22 जनवरी का भारत एक तरफा भारत नहीं था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मार्च कर रही थीं और अलग अलग धर्म स्थलों पर जा रही थीं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी के राम या रहीम की आराधना करने पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई उसका राजनीतिकरण करे इस बात से आपत्ति है। जब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं तब मैं भाजपा की प्राथमिकताओं से इत्तेफाक नहीं रखती। ये भी सवाल किया कि क्या सीता का नाम न लेकर भाजपा ये दिखाना चाहती है कि वो महिला विरोधी है। इसी दौर में सबको साथ लेकर चलने का यह साहस किसी के भीतर अब भी बचा हुआ है। ममता ने वह नहीं किया जो केजरीवाल ने किया। ममता ने मोदी की ताकत से अलग हटकर चलने का साहस दिखाया। केजरीवाल की पार्टी के नेता शोभा यात्रा निकालने लगे। वे बीजेपी संघ और गोदी मीडिया के तंत्र के बनाए राममय माहौल में ही प्रभावित होने लगे। केजरीवाल को लगा कि बीजेपी की तरह होकर ही बीजेपी से लड़ा जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने राम तक पहुंचने का वही रास्ता चुना जो बीजेपी पहले से बना चुकी थी। 22 जनवरी के भारत में राम को आगे कर लड़ रही बीजेपी से लड़ने के दो रास्ते नजर आए, एक ममता का, एक अरविंद केजरीवाल का। एक तीसरा रास्ता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का दिखा, जो 21 जनवरी को समस्तीपुर में अस्पताल का उद्घाटन करने चले गए। 500 बेड वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जमीन श्री राम जानकी मठ ने दी थी। खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल में भी 100 बेड के अस्पताल का लोकार्पण किया गया। क्या लोग मंदिर छोड़कर अस्पताल में राम खोज लेंगे, मुश्किल है कहना, मगर किसी ने कोशिश तो की कि वह बीजेपी से अलग दिखे, उसके बनाए रास्ते को छोड़कर अपनी पतली सी पगडंडी पर चलता रहे। इसलिए 22 जनवरी के भारत को देखना है तो निरंकुश सत्ता के विशाल प्रभाव क्षेत्र से भी बाहर झांकिए। असम में राहुल गांधी की पदयात्रा निकल रही थी, जगह जगह पर टोका टोकी हुई। 22 की सुबह जब राहुल गांधी ने श्री शंकर देव की जन्मस्थली पर जाने का रुख किया, उन्हें रोक दिया गया। राहुल सड़क पर बैठ गए लेकिन जाने नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, किसी को भी भगवान के दर्शन करने से रोकने से बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। रघुपति राघव राजा राम गांधी के प्रिय भजन को गाते हुए राहुल और उनके साथी सड़क पर बैठ गए। मोदी राम मंदिर में, राहुल राम भजन के साथ सड़क पर। यह भी राम की लीला ही थी कि असम की सरकार ने राहुल गांधी को श्रीमंत शंकर देव के नाम घर में जाने से रोक दिया। असम के वैष्णव संत और महापुरुष श्रीमंत शंकर देव का यह जन्म स्थान है। उनके स्थान पर जाने से रोकने वाला भारत क्या वाकई में कोई नया भारत है? क्या यही कालचक्र घूमा है कि अब कोई सरकार तय करेगी मंदिर या नाम घर कौन जाएगा कौन नहीं? जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि जन्म स्थान पर जाने की अनुमति 11 जनवरी को मिली थी, लेकिन 20 जनवरी की शाम अचानक असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया राहुल गांधी 22 जनवरी की सुबह बरदोवा थान नहीं जा सकते। बाद में कहा कि प्रबंधन समिति का निर्णय है। जयराम ने कहा कि दिल्ली और असम के मुख्यमंत्री ने दबाव डाला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तस्वीरें ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी की तरफ से वे श्री शंकर देव की जन्मस्थली जा आए हैं क्योंकि राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं दी गई।
मुझे बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है नहीं जा सकते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं जा सकते, क्या गलती की है मैंने? मैं बस हाथ जोड़ने जाना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट प्ले करना चाहता हूँ, बट ये अलाउ नहीं कर रहे। अब देख रहे हैं, बस मैं कारण पूछ रहा हूँ। नाउ गवर्नमेंट एंड मोदी जी विल डिसाइड मंदिर कौन जा सकता है, कब जा सकता है और कब नहीं जा सकता है। शायद आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर में जा सकता है।
मैंने सोचा था अगर हम असम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम भी उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। तो वो हमारे लिए एक गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। तो मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक लूँ। उनका इनविटेशन आया था, 11 तारीख को इनवाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गौरव गोगोई जी जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकता। तो पता नहीं, कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊंगा। और मेरी सोच है कि जो शंकर देव जी ने कहा था, जो रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पर देश को और असम को चलना चाहिए।
USTM यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का कार्यक्रम होना था, मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूनिवर्सिटी जितनी स्वतंत्र नजर आती है, आदेश जारी करती है कि कितने घंटे की छुट्टी होगी, क्या क्या कार्यक्रम होंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ संवाद की अनुमति रद्द कर दी जाती है। यही कालचक्र तो घूमा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि अमित शाह ने हिमंता के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी प्रशासन और मालिकों पर दबाव बनाया, लेकिन जब राहुल आज गुवाहाटी की ओर से प्रस्थान कर रहे थे तब यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र सड़क पर उनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए और इस बेपनाह मोहब्बत को देखकर राहुल ने रुककर छात्रों को संबोधित किया। कांग्रेस इसे लेकर उत्साहित है कि मेघालय की जनता ने राहुल गांधी का बड़ा स्वागत किया। 22 जनवरी का यह भारत दिल्ली के भारत से अलग जरूर है, मगर यह भीड़ उस राजनीति का जवाब नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने आज के भारत में खड़ी की है। उसकी चुनौती का सामना तो यूपी और बिहार की जमीन पर आकर ही करना पड़ेगा, मगर यही कम राहत की बात नहीं कि 22 जनवरी को सारा भारत एक तरफा नजर नहीं आया। लोग कम थे मगर बोल रहे थे।
देखिए, मैं यहां आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा।
22 जनवरी को भारत नहीं बदला, यह कहना समय की सच्चाई से इनकार करना होगा। जरूर बदला है, लेकिन क्या उस तरह से बदला है जिसका दावा किया जा रहा है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि सब कुछ अब खत्म हो गया। हताश और निराश होने से पहले थोड़ा रुकिए, भारत को एक बार नजर घुमाकर देख लीजिए। राजनीतिक जीत जरूर काफी कुछ तय करती है, मगर वही अंतिम होती तो राम मंदिर से पहले भी नरेंद्र मोदी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, याद रखिए। देखने की बात यह है कि राम मंदिर के बहाने किस तरह से प्रधानमंत्री को तपस्वी ऋषि मुनियों के खांचे में फिट किया गया। मेरी कार के चक्र ने सारे भारत को तो नहीं देखा, सारी दिल्ली को नहीं देखा, एक छोटे से हिस्से में चक्र निचक्कर लगाए, मगर देवगिरी का भाषण याद आता रहा। उनके भाषणों में इस बात पर जोर था कि प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुए हैं। प्राप्ति पर इस तरह का जोर चंपत राय के उस ऐलान से अलग नहीं था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार कहा, प्रधानमंत्री ने राम को विधान कहा। उम्मीद है आप इस आवाज को आज ही सुनेंगे, समझेंगे हजार साल के बाद का भारत किसने देखा है। इसी भारत के हजारों कोनों से जो आवाजें आ रही हैं उसे सुनिए। मैं जा रहा हूं देवगिरी के इन शब्दों को आपके बीच छोड़ते हुए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।
कोई महापुरुष हम लोगों को उपलब्ध होता है और उस विभूति के कारण युग परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन लाने के लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है और इस प्रकार जीवन साधने वाले हमारे इस देश की परंपरा के अनेक महान रत्नों में आज हम लोगों को समय की आवश्यकता, युग की आवश्यकता, सनातन के अंतकरण की आवश्यकता के रूप में हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी प्राप्त हुए हैं। यह केवल इस देश का नहीं, यह संपूर्ण विश्व का सौभाग्य है कि आज एक ऐसा राजदर्शी हम लोगों को प्राप्त हुआ है।